Ladies and gentlemen, good day and welcome to the BR Goel Infrastructure Limited Q2 H1 FY26 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. I now hand the conference over to Mr. Yash Goel, Executive Director of BR Goel Infrastructure. Thank you, and over to you, sir.
Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all the participants joining us today on the maiden earnings conference call for BR Goel Infrastructure Limited to discuss the company's performance for the first half of financial year FY25-26. On behalf of the management, I would like to thank you all for taking the time to join us and for your continued interest and support in our company. Before we begin, I would like to take this opportunity to give you a brief overview of our journey so far and highlight the key developments that took place during the period under review. BR Goel Infrastructure Limited was incorporated in 2005, and over the last two decades, it has evolved from regional road and building construction contractor based in Indore, Madhya Pradesh, into a multi-vertical infrastructure company operating across several states in India. Our core strength lies in engineering, procurement, and construction (EPC) services for road, highway, bridges, building, and water-related infrastructure. Over time, we have strategically diversified into toll collection contracts and ready-mix concrete (RMC) production, creating a well-balanced business model that combines both execution-based and annuity-driven revenue streams. EPC division: within the division, the company has successfully executed multi-large-scale infrastructure projects across India. Some of the notable work include major road development projects in Northeast states and Maharashtra under various government departments, underground sewage networks projects in Tamil Nadu, and national highway improvement and building projects in Madhya Pradesh. These projects highlight BRG Infra's growing capabilities in handling complex, high-value assignments and in continued focus on technical excellence and timely execution. At present, the company is executing 28 EPC contracts in road, building, and water infra across India. The toll collection contracts, which is named as TCC business, has emerged as a key growth driver for the company, offering predictable and recurring cash flows for complement in EPC operations. BRG Infra currently operates 12 active toll collection projects across multiple states, including major contracts from Nagpur-Sivni-Betul, Hardoi-Betul highway section. The company also secured renewal of several existing plazas, reflecting a confidence of agencies such as NHAI and various PWDs in its performance and operational reliability. The ready-mix concrete division is an addition to the EPC and TCC operation. Based out of Indore, it has an installed capacity of 1.7 lakh-1.8 lakh cubic meters per annum, catering to both captive requirements and third-party clients. This vertical supports the company's backward integration strategy and contributes to cost effectiveness. Our RMC plant is the highest production capacity plant amongst all other players. At present, we are utilizing almost 70%-75% of our plant capacity. Apart from all the above, the company is earning some part of revenue from real estate also. The company has completed its first private industrial park, and it was recognized by the government, awarded by the Best Captain of the Industry Award. The company has launched two real estate plotting projects in Indore, namely BRG Hillview 2 and BRG Hillview 2 Extension. The total remaining available area comprises of around 1.6 lakh sq ft. The company entered into the wastewater treatment segment in FY26, marked another strategic milestone, expanding its capabilities into sustainable infrastructure. The order book as of September 30, 2025, stands for 1,535 crore, including approximately 162 crore from the wastewater treatment segment, reflecting the company's growing diversification, execution strength, and the trust reposed by its clients across sectors. Today, we We are proud to have successfully executed over 30 projects worth more than 1,200 plus crores, building a strong reputation for engineering quality, financial discipline, and project reliability. And are currently working on ongoing 40 projects valued around 2,782 crores spread across 10 states from Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, Odisha, and even the far reaches of Mizoram and Manipur. This wide geographical presence is a testament to the trust we have earned and to the quality we consistently deliver. At the heart of this success is our strong asset base for more than 222 construction machines and vehicles and a skilled workforce of over 1,100 employees. It is their dedication, technical expertise, and relentless hard work that enables us to deliver projects faster, maintain quality standards, and achieve better margins. Our clients' portfolio includes some of the most prestigious names in the infrastructure ecosystem: NHAI, NHAI DCL, MORTH, PWDs, Municipal Corporation, Development Authorities, MSIDC, and other leading private corporates, each reflecting the credibility and reputation BRG Infra has built over the past years. With a strong foundation, disciplined growth strategy, and diversified business model, BRG Infra continues to strengthen its position as one of India's emerging mid-sized infrastructure players. Moving to the key development during the first half of financial year 26, the period has been one of the most operational momentum and continued order inflows. The company has achieved highest turnover of 342 crores on consolidated basis in H1 FY26, which is the ever highest in the history of the company. During the first half of FY26, BRG Infra maintained the growth trajectory supported by strong work order inflows and consistent execution. Between 1st April 2025 and September 30, 2025, the company received new orders worth 582.45 crores gross, spanning roads, buildings, wastewater treatment, and toll collection contracts. In the same period, we executed work orders amounting to 360 crores compared to 233 crores gross during the corresponding period last year, marking a robust growth of 54% year-on-year growth. As of September 30, 2023, our unexecuted order book stood at 1,535 crores as compared to 887 crores as on September 30, 2024, representing an impressive growth of 73%. We also strengthened our presence in southern India through getting new project wins in wastewater infra sector in Tamil Nadu, enhanced our toll collection portfolio through renewables and fresh contracts. Our focus remains on improving project efficiency through mechanization, optimization equipment usage, and implementing better cash flows discipline to support future growth. Going forward, the company remains optimistic about the outlook for the infrastructure sector. The government's continued focus on capital expenditure, expressway development, and rural connectivity is expected to generate sustained opportunities for mid-sized EPC players like BRG Infra. Our near-term priorities include scaling our presence in higher-ticket EPC roads and building projects, expanding the NBT toll collection portfolio for predictable revenues, strengthening presence in wastewater and water management, enhancing bid efficiency and working capital rotation. With our strong execution capabilities, growing order book, and a balanced business model, we are well positioned to deliver sustainable growth in the coming years. With this, I would now like to hand over the call to our Chief Financial Officer, Mr. Dashrath Tomar, who will take you through the financial highlights of the period under the review. Over to you.
Thank you, Ashley. Good afternoon, everyone. Now, let me now take you through the financial performance for H1 Financial 26. For H1 26, we delivered resilient performance amid a dynamic industry environment. Our revenue from operation is stood at rupees 342 crore on consolidated basis compared to 213 crore in last year. reflecting healthy growth driven by higher ticket size, then efficient execution and higher toll collection contracts. Our EBITDA is stood at rupees 27 crore, translating to an EBITDA margin of 8.03%. Margins are improved on account of efficient working capital and advancement of raw materials, leading to discount from suppliers. As in the infrastructure industry, the ratio for sales bookings 40-50% in the first half and 55-60% second half. Now, profit after tax is stood at rupees 16 crore compared to rupees 6 crore in last year. It is reflecting a strong improvement in profitability on account of higher execution volumes and higher margin toll collection contracts and improved realization. Amount invested by the company in capex around 13.5 crores on basic and including GST is around 16 crores. This is majorly in the plant and machinery, construction equipment and vehicles. Now, this capex will ensure the project execution in a smooth and fast way. Our return ratios remain healthy, supported by lean working capital cycles and effective cost management. From a balance sheet standpoint, BRG Infra remains conservatively leveraged with a debt to equity ratio below industry average, providing ample headroom for future growth. The toll collection business, which provides a recurring income stream, contributed meaningfully to profitability and margin stability. Meanwhile, the RMC operations helped reduce dependency on external vendors and contributed to both cost savings and quality consistency. The improvement in margins during this period was driven by higher execution in road and toll segments, increased the share of big ticket size projects from the government department, increased margin in toll collection contracts, better cost control and equipment utilization, efficient use of our working capital. Once again, I repeat that our order book is around 1535 crore on September 30, 2025. This provides a clear visibility for the next 2 years, and we remain confident of delivering consistent growth, both in top line and profitability. With this, we are happy to open the floor for questions and look forward to addressing your queries.
So, are you there?
Yes,
yes, sir.
Should we start with the question and answer now?
Yes, yes, ma'am.
Thank you very much. We will now begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Tejpal Singh, an individual investor. Please go ahead.
Hello, sir. I'm audible?
Yes.
So, congratulations, sir, on the good set of numbers, sir. I just wanted to know about the how Toll Plaza works, the unit economics, how you evaluate the project for the Toll Plaza project. Just wanted to. And what is the current bid pipeline we have in the Toll Plaza segment?
Thank you for the question, sir. So the process of bidding a toll plaza, we look at three different aspects when we are bidding for a plaza. First, we collect our data manually, where we set our team of 5 people to our plaza which we are targeting. And we have a 7-day data analysis for a 24-hour, 24/7 data analysis, where we find out how many vehicles are passing through the toll plazas and everything. Then we match those data with the banking which has done in the past from that plaza and the data provided by the government authorities. We compile these three data and then we make our numbers, and that is how we bid our project cost. It helps us in procuring data and also being precise for a bid. And
sorry to disturb you, but what metrics we look at, like IRR, the certain IRR we look for or certain numbers like?
IRR, yes, we do look for an IRR because when we talk about EPC or when we talk about toll, the IRR we expect from a toll project is around 30%.
Okay.
So we do consider that IRR. And also, when we are bidding for a toll contract, the biggest thing which we've learned or we've seen is that the connecting highways, which increases the or decreases the traffic. So we're in, this is the third running year which we are operating toll plaza, sir. And talking about your second part of the question, bid pipeline, sir, in toll plaza, actually, as we are pre-qualified, so every day there's a bidding. There is no order pipeline. Right now, as we speak, around 50 to 60 crores of orders are already bidded, which are yet to be opened. And we're targeting around 500 crores of next bidding, around 500 crores of new plazas to be bidded in the next coming, you can say, this financial year.
And so what is total bid pipeline that we have bidded for projects and all sizes?
For the toll plazas or remaining?
No, total overall.
Overall, around the 2500 crores of projects we have already bidded, and we are expecting, we have already submitted the bids.
And so we have, our receivables have increased significantly. So how do we plan to manage, execute those projects? Because we have a higher receivable side. So how do we ensure that our working capital cycle doesn't stretch long?
Sir, मैं दर्शक तोमर सर CFO मैं आंसर करता हूँ सर आपके क्वेश्चन का ये सर एज अ फाइनेंशियल अगर आप रेफर करेंगे सो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो मेरा अराउंड 45 टू 60 डेज के आसपास है एंड इन कंपेयर टू टर्नओवर अगर आप कंपेयर करते हैं तो वर्किंग कैपिटल साइकिल और डेट ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीज परसेंटेज वाइज इतना नहीं है हाँ एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज है बिकॉज ऑफ टर्नओवर इंक्रीज हुआ है दैट्स व्हाई सो ऐसा कोई वर्किंग कैपिटल का चैलेंज यहाँ पे नहीं आएगा मुझे कि मुझे करंट ईयर के जो टारगेट्स है अचीव करने में जो है वो वर्किंग कैपिटल कहीं कुछ प्रॉब्लम हो
ओके ओके सर दैट्स वेरी हेल्पफुल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर
थैंक यू
थैंक यू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ साकेत कपूर फ्रॉम कपूर को प्लीज गो अहेड
नमस्कार सर
नमस्कार
सर एज यू एल्यूडेड टू द फैक्ट दैट वी आर लुकिंग नाउ फॉर पैन इंडिया प्रेजेंस इन इन द ईपीसी सेगमेंट स्पेशली रिलेटेड टू टू द वाटर एक्टिविटी सो व्हाट काइंड ऑफ बिग पाइपलाइन आर वी सीइंग फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र करेंटली इफ यू कुड जस्ट गिव सम कलर
फॉर वाटर स्पेसिफिकली सर
Yes, sir.
Sir, right now we've not explored in the state of Uttar Pradesh or Maharashtra, but yes, okay. In different other states like Bihar, we have already bidded. Because of the election, we are not able to find out. It will be gone after 1 month or 2 months. But out of this 2,500 crores order pipeline, almost around 700 to 750 crores of water wastewater works we've already bidded.
Okay. Sir,
yes, sir.
As we have seen in many EPC companies, whoever are doing work for the state government under the Jal Jeevan scheme or other aspect, a lot of capital has been struck up, execution has happened, but payments are being withheld. So taking this landscape into account, what is your thought process and are you anyway anyway affected or in your closing order book do you have any portion which is attributable to the Jal Jeevan or the Amrut schemes run by the state and the central government
sir actually in Amrut 1.0 the payments were stuck because of there was a change in mechanism of the payment system by central government So, we were not participating in those bids because since this financial year only we started for wastewater treatment. So, right now the projects which we are executing in Tamil Nadu, these are for World Bank. So, there are no issues for payment as such till now. And the bid which we are looking forward is under Amrut 2.0 and Jal Jeevan Mission. But the financials are now very clear and the government has started releasing those payments. So I think so in near future when we talk about the next 3-4 years, I don't think so there are issues in the government. And also like we had a study and we found out that till next 5 years, a government in Pan India is expected to invest or capital expenditure for wastewater and these water missions will be around $9 to $10 billion. So that's a huge investment which the government is looking into all these projects. So I don't think so now from on, because after the change in software and change in financial mechanism, the funding should be an issue.
So can you explain the change in software and the funding mechanism? And sir, we are only specialized in wastewater treatment, not for the tap connectivity and the...
We are not looking for those things. So the waste... So in our projects, there are no changes. But when we were looking for those projects, there was a SAP software change where the government will now put all the money, all the money will be disbursed from the central government. Earlier, what it was supposed to happen is the central government was funding the state government, and the state, there was an equity share of, say, hypothetically, say 50-50. So out of a 100 rupees bill, 50 rupees was given by central government and 50 was supposed to be done by state government. So there were lapses in the fund because of state government's prior commitments and everything. So now what government has did is the government, central government is taking the money from the state government and the central government is directly paying to the contractors. So there is a surety of payment which is to be done.
Okay. And when has this been implemented, sir?
I think so September only, like two, three months back.
Okay. And this will take care of the previous dues also, or those, what is the status
on everything, all the projects which are live right now, like under execution also, and the near future, the projects which are coming.
Okay. And so we have our expertise only in the wastewater part. So desalination part is also, we are working with any desalination plant or going ahead with that technology?
Not right now, sir.
Okay. So our focus will be pertaining to only to the wastewater.
For now, yes, sir. For the future and for the present scenario, yes. Till now we are into wastewater and we're looking forward for wastewater only.
Okay. Sir, I'll join the queue and thank you, sir, for the clarification.
Thank you.
All the best, and we hope, sir, that at least twice in a year we will be hosting calls along with the results. So
definitely. Thank you.
Thank you, sir.
Thank you.
Thanks.
The next question is from the line of Gursidak Singh from Prudent Equity. Please go ahead.
Hello, I'm Audible.
Yes.
Hi, so I want to know the execution timeline for the current order book, the unexecuted order book. What is your average execution time for the ongoing projects?
So between 12 months to 24 months or 36 months, depending on the order. Like all, some orders are yet to execute, some orders are started the execution, so it will take 18 months to 24 months from now. Some orders are yet to be started, which will start in the next 3-4 months. So that will go a little bit beyond. Some orders are halfway through. So between 12 months to 36 months is our completion period.
So what about the majority of the current order book? Is it going towards 36 months or is it near 18 months?
Sir, it is a little bit trick for us because we will not be able to explain, because every order has different guidelines. So it's a range.
What about the...
सर इसका मैं और एक्सप्लेन सर थोड़ा कर देता हूँ ऑर्डर्स को सर इसमें साथ में, बिकॉज जो 1535 करोड़ की ऑर्डर्स हैं अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट ईयर में अराउंड 400 से 450 करोड़ के ऑर्डर्स इसमें से एक्सिक्यूट हो जाएंगे इन फर्स्ट 26
ओके
और नेक्स्ट ईयर अराउंड सर 800 से 900 करोड़ के ऑर्डर इसमें एक्सिक्यूट होंगे एंड तब तक बिग पाइपलाइन में है, नए टेंडर्स भी मिलेंगे सो वो एक ऑर्डर बुक इस टाइप से मॉडल चलेगा सर.
Okay. Yes. And what about the debt? Because you're saying that you guys are going to execute in the next half. So, for that, you're saying that working capital is okay. But debt, you're going to debt? Because now, like, in the next 6 months, the debt is 70 crore, 70-77 crore. So, do you have plans to further increase the debt, or how will you do it?
सर मेरा डेट पढ़ने का सर मेन रीजन है मेरी, मैंने कैपेक्स किया था कैपेक्स में अराउंड में 16 करोड़ का कैपेक्स किया है और उसमें 8 करोड़ का आईपीओ प्रोसीड से किया था, एक ऑब्जेक्ट था मेरा उसमें एंड बैलेंस 8 करोड़ में अराउंड 7 करोड़ का मैंने टर्म लोन लिया, इक्विपमेंट लोन, कमर्शियल लोन. सो वो है नाउ करंट के लिए अगर मैं बात करता हूँ डेट बढ़ाने के लिए तो बहुत बड़े डेट की रिक्वायरमेंट होती नहीं वर्किंग कैपिटल साइकिल में, बिकॉज जैसे ही कोई वर्क ऑर्डर सर मुझे मिलता है तो मोबिलेशन एडवांस क्लॉज होता है उसमें और बैंक गारंटी के अगेंस्ट में मोबाइल वहां पर मिल जाता है। हाँ, ये कैसा इससे है कि जो बिजनेस मेरा बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे बैंक गारंटी में एनहांसमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो अराउंड 100 CR के आसपास मेरा बैंक गारंटी का एनहांसमेंट होगा सर।
और अभी 250 है राइट नाउ, कितना अभी बैंक गारंटी? 250 करोड़
अभी 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 225 है सर।
225 ओके, एंड यू आर सेइंग कि 350 तक जा सकता है एट मैक्स अभी विद इन दिस ईयर?
यस सर, मैक्सिमम जो बैंक गारंटी लिमिट है वो 100 से इंक्रीज होगी 325 हो जाएगा। नाउ होता ही है सर कि जब हम बैंक गारंटी लिमिट के लिए एनहांसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं बैंक में, तो कुछ थोड़ा सा पार्ट उनको उसी पोर्शन में फंड बेस बढ़ाना होता है, तो हो सकता है कुछ उसी पोर्शन में 5-10% बढ़ाएं फिर उसमें।
ओके, एंड व्हाट वाज द, सो ऑन योर बैलेंस शीट एक लोन्स एंड एडवांसेस भी ऐड हो गया रिसेंटली 93 करोड़ का, ये आ गया है वैसा, अगर आप लोग कुछ आगे दे पाएंगे
सर एक बार फिर से बताएंगे? एक्चुअली
आप लोगों के बैलेंस शीट में लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स में लोन्स एंड एडवांसेस एक 93 करोड़ का आ रहा है, वो कहाँ गया वैसा अगर आप कुछ दे पाएंगे?
93 करोड़ तो नहीं है सर इसमें। सर जैसे अगर मैं बैलेंस शीट से रेफर करता हूँ इसके लोन, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो है 33 करोड़ और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 62 करोड़ है।
हाँ, वो मिला के 90 लोन्स एंड एडवांसेस वो गया।
हाँ, तो इसमें अगर आप देखेंगे सर लास्ट टाइम 31 मार्च का, तो अराउंड 40 करोड़ जो है वो लॉन्ग टर्म लोन था, 21 का जो है वो 32 का शॉर्ट टर्म लोन था, अराउंड 73 करोड़ का मेरा ओपनिंग फिगर्स था सर उसमें। नाउ एनहांसमेंट की बात करेंगे तो 23 करोड़ का एनहांसमेंट इसमें हुआ है। सर इसमें एनहांसमेंट में कहूंगा तो मेरे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो मैंने काम लिए हैं, बिकॉज मेरे क्रेडेंशियल नहीं है अभी कि मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बीट कर सकूं, तो मैंने जॉइंट वेंचर करके और सब कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ काम लिए हैं, और वहां पर ये अमाउंट बीजी मार्जिन के रूप में हमने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है अराउंड 20 CR के आसपास।
ओके
जी, जी सर,
थैंक यू।
थैंक यू सर।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ रोहन मेहता, एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, प्लीज गो अहेड।
जी
yeah, hello, good afternoon sir, thank you for the opportunity.
Thank you.
Sir, if you could just touch upon our cash flow situation, operating cash flow, what can we expect in the next half year in terms of operating cash flow, when we can get positive, and especially given the rising scale of our operations, what are your views on that sir?
सर इसमें दो तीन मेजर वर्क ऑर्डर्स हैं जो बिग टिकट साइज हैं जो करंट में अभी जून के बाद में शुरू हुए हैं। सो मेजर इन्वेस्टमेंट मेरा जो है वहां पर अभी हुआ है 170 करोड़ के वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के हैं जो राइट शुरू हुए हैं, अराउंड 8 करोड़ के आसपास मेरा रेवेन्यू बुकिंग हुआ है वहां पे। और महाराष्ट्र में नासिक में एक 130 करोड़ का नया काम मिला था वो एक 170 CR का, तो ये तीनों का रेवेन्यू बुकिंग शुरू हो चुका है। और अभी आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, WIP में एनहांसमेंट हुआ है बिकॉज पूरा पैसा वहां पे भी डिप्लॉय हुआ है। नाउ ये रियलाइजेशन वहां शुरू हो चुका है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, सो पॉजिटिवली 31 मार्च को जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो मेरा पॉजिटिव रहेगा।
ओके ओके गॉट इट सर। और सर ऑर्डर बुक सिंस काफी बड़ी है, ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा बड़ी है, तो कौन से कैटेगरीज आप बोलेंगे कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, सिंस अभी रोड EPC भी है अपना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, टोल कलेक्शन है, तो इनमें से कौन से सेगमेंट्स आपके हिसाब से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे?
सर सबसे ज्यादा अभी करंटली अगर अपन अकेले की बात करें तो 70% ग्रोथ है सर, हमारे रोड्स के ऑर्डर काफी अच्छे लेवल पे पड़े हैं। तो अभी आज की डेट में 1535 करोड़ का जो मैं बाइफर्केशन बताऊं आपको, तो लगभग 1000 करोड़ की तो मेरे रोड EPC के पेंडिंग है, अराउंड 100 करोड़ के मेरे बिल्डिंग EPC के पेंडिंग है, अराउंड 160 करोड़ के मेरे वेस्ट वाटर के पेंडिंग है, और 275 के मेरे टोल कलेक्शन के पेंडिंग है। तो ऐसे टोटल करते हैं तो लगभग 535 करोड़ के ऑर्डर्स मेरे पेंडिंग है। तो रोड सेक्टर एक ड्राइविंग रहेगा फोर्स, फिर वेस्ट वाटर, टोल कलेक्शन, ये वाले रहेंगे सर।
और सर इनमें मार्जिन हर एक टाइप के काम में अलग मिलता है या सिमिलरी रेंज में मिलता है
सर? EPC बिल्डिंग, EPC रोड में लगभग सेम रहता है सर, लगभग 13-15% का EBITDA रहता है, 7-8% का PAT रहता है। वेस्ट वाटर में लगभग EBITDA 18-20% हो जाता है, इन पैट 12 से 15 होता है, तो इसमें इस क्वार्टर में पैट अच्छा रहता है। टीसीसी में ईबीटा 2 से 4% के आसपास रहता है एंड पैट 1.5 से 2.5 या 3 तक रहता है।
ओके 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 और सर इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफीज ऑल्सो अभी कुछ आई गेस 10 या 11 स्टेट्स में हमारे ऑपरेशन हैं, तो वहाँ पे भी कुछ प्लान्स हैं कि मतलब कौन सी ज्योग्राफी से ज्यादा बिजनेस आ रहा है तो वहाँ हम फोकस कर रहे हैं, या कोई नई ज्योग्राफी में घुसने वाले हैं इंडिया में?
सर जैसे अभी जो 10 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अभी हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। लगभग लगभग ऑर्डर जो पेंडिंग है उसका 50% महाराष्ट्र है हमारा, फिर MP है, गुजरात है, तमिलनाडु है, UP है, तो अभी इन स्टेट्स पे ज्यादा फोकस है। अभी जैसे हमने वेस्ट वाटर के लिए बिहार में बिडिंग करी है, तो अब आफ्टर द सिलेक्शन जैसे गवर्नमेंट स्टेबल बन जाती है तो वो टेंडर्स ओपन होने हैं विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स, तो फिर नया स्टेट ऐड हो जाएगा बिहार। हम बिहार में भी फोकस करें कि बिहार में हमें दिखता है कि अपॉर्चुनिटीज के लिए उनका पेमेंट्स भी ठीक है एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी काफी अच्छे लेके आ रही है, भले वो रोड के हो, बिल्डिंग के हो, वेस्ट वाटर के हो।
ओके ओके
यस।
और सर एक खाली और सवाल था, ये हमारे जैसे NHAI है या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इनसे काफी सारे ऑर्डर्स आते हैं, तो कुछ आप क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क दिखता है क्या इनमें कि हमारा ज्यादातर रेवेन्यू इन पे ही डिपेंडेंट है, या इज दैट नॉट अ बिग रिस्क?
सर एक्चुअली MORTH करके इनकी प्रिंसिपल कंपनी है सर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। सर हमारा फोकस ये रहता है कि जो भी MORTH के अंडर आते हैं रोड प्रोजेक्ट, फिर वो NHAI हो या NHICL हो, BRO हो, ये सब उन्हीं के अंडर आ रहे हैं, तो हमारा फोकस ये रहता है कि हम उनसे प्रोजेक्ट करें।
ओके ओके।
क्योंकि सर यहाँ पे पेमेंट की श्योरिटी रहती है सर, पेमेंट स्टक नहीं होता।
राइट राइट, डिलेड भी नहीं होता ना, मतलब रिसीवेबल्स में अटकता है क्या सर?
सर नहीं सर, रेगुलर पेमेंट चलते हैं, पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं तो अभी तक कहीं पे भी पेमेंट का मतलब नहीं रहा है। अपन बिल्स रेज करते हैं, बिल्स रेज करने का जो सिस्टम रहता है लगभग लगभग सब मतलब विद इन 10-15 डेज जो एक रेगुलर साइकिल होती है जैसे कि उसमें आ जाते हैं पेमेंट।
ओके ओके। और यस आखिरी सवाल था, वेस्ट वाटर तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, अभी हमने HAM और PPP, HAM और PPP मॉडल्स में भी इंटरेस्ट जताया है, सो यहाँ पे सर डू यू सी कि कंपटीशन भी होगा क्योंकि बहुत सारे एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, तो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कैपेबिलिटी और स्केल अप कर पाने का, तो उसमें आपका कंपटीशन देखें तो आपका क्या इस पे व्यू होगा सर?
सर एक्चुअली हमें कंपटीशन जरूर है सर, लेकिन लॉन्ग टर्म IRR बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट्स का, हम इसलिए फोकस के हमने बिल्डिंग भी स्टार्ट कर दी सर। हमने 950,000 करोड़ का सिंगल हैम भी डाला था, वो हमें नहीं मिला, 80 करोड़ का हमारी एक सब्सिडी में SPV में चल ही रहा है प्रोजेक्ट स्टेट हैम, तो हम लोग हैम में बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग दोज प्रोजेक्ट। लेकिन क्या होता है सर कि हमारा फोकस प्राइमरी EPC सेकेंडरी हैम पे, क्योंकि हमें अभी हमारा स्केल इंक्रीज करना है ताकि हम 1,000 करोड़ 1.5 हज़ार करोड़ के सिंगल ऑर्डर डायरेक्टली बिट कर सके। अभी हमारी कैपेसिटी रोड प्रोजेक्ट्स में 500-600 करोड़ का सिंगल ऑर्डर बिट करने की, बिल्डिंग्स में हम मोर देन 100 करोड़ का सिंगल ऑर्डर बिट कर सकते हैं। वेस्ट वाटर में अभी हम क्रेडिबली फाइनेंशियली क्वालिफाइड है, लेकिन टेक्निकली अभी हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है। टोल में हम 2,000 करोड़ का सिंगल टोल ले सकते हैं, तो हम लोग अभी हमारी क्रेडेंशियल्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं।
ओके ओके।
तो हम हैम मतलब हैम हमारी प्रायोरिटी है, वन ऑफ द प्रायोरिटीज है, लेकिन अटमोस्ट प्रायोरिटी नहीं है।
ऑलराइट सर, थैंक यू एंड
थैंक यू सर।
थैंक यू। The next question is from the line of Muskan Malhotra, an individual investor. Please go ahead.
Hi, sir. Thank you for the opportunity. So, I have 2 questions for you. So, abhi R&C utilization was 65% in FY25 and about 33% in H1 FY26. So, how do you plan to scale this utilization in H2?
Ma'am, actually, H1 mein... प्राइमरीली रेन्स के कारण जो हमारा थर्ड पार्टी कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, बिकॉज जो थर्ड पार्टी हम बोलते हैं तो जो लोकल बिल्डर्स जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको रेडीमिक्स कॉन्क्रीट लगता है। तो H2 में हमारे जिन बिल्डर्स के ऑलरेडी टाई अप है जिनसे हम ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। एक टेंटेटिवली देखा जाए तो 35-65 का रेशियो रहता है H1 अगर 35% होता है और H2 65% होता है हमारा।
Got it.
Yes,
ma'am. The other question is that you've indicated a focus on EPC projects above 100 crores and TCC bids between 100 to 200 crores. So do you think the company has already started qualifying for the larger bids?
Ma'am, as I mentioned in the earlier message also that company is qualified to bid for road projects for 600 crores individually, for building works above 100 crores. Till 150 crores of single building project can be bidded by the company directly. For a toll collection, we can go up to 1500 to 2000 crores of single order.
Okay. Understood, sir. Thank you so much and all the very best.
Thank you so much, ma'am.
Thank you. The next question is from the line of Shaurya from Arjav Partners. Please go ahead.
Hi, I'm Audrey.
Hi. Yes, sir.
Sir, I wanted to know what kind of revenue growth are we targeting this year and next year?
Hello? Sir.
Hello?
Yeah.
Yes, sir. Sir, I wanted to know what kind of revenue growth are we targeting this year and next year?
Sir, we are expecting around 35 to 40% growth in on top line and as well as on bottom line also. Because right now in the first half we have crossed 342 crore turnover, and this industry, if we segregate the industry in H1, H2, so the H1 is around 40 to 45%, and H2 is 50 to 55%. So we are expecting around 400 to 450 crore turnover in
H2. Yeah.
Yeah.
Can you repeat the last part? I could not hear it.
Sir, जैसे ये सर इंडस्ट्री में इंफ्रा में आप देखेंगे तो H1 जो है अराउंड 40% से 45% के आसपास H1 में होता है टर्नओवर एग्जीक्यूट, एंड H2 में 50 से लेके 55 तक होता है, बिकॉज ऑफ ये 3 महीने रेनी सीजन भी होता है H1 में, एंड मैं अगर उसको वैसे कंपेयर करता हूँ तो 330 करोड़ का टर्नओवर हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं H1 में, एंड एक्सपेक्ट है कि करंट H2 में 400 से लेकर 450 का टर्नओवर अचीव करें। जैसे लास्ट ईयर हम देखते हैं अगर, तो H1 मेरा लास्ट ईयर था 212 करोड़ का टर्नओवर था H1 में, एंड फॉर होल ईयर इट इज 505, सो अराउंड 300 करोड़ का टर्नओवर H2 में हुआ था। हेलो, एम आर डी,
हेलो, so around 750-700 crores revenue this year.
Yes, sir. We are expecting 700 to 750. That's why I'm saying that we are targeting around 35 to 40% growth from the last year.
And sir, आपने वैसे थोड़े पहले बहुत है कि 800 to 900 crores of orders next year execute हो गए, right?
Sir, जी sir.
तो मतलब 900 crore का revenue अगले साल target है?
Next year sir, 27.
हाँ,
27 जी जी सर। सर 1500 करोड़ के ऑर्डर, सर 1500 करोड़ के ऑर्डर अभी हाथ में है, एवरेज टाइम लाइन जो है 12 महीने से लेके 30 महीने का है अराउंड।
ओके,
बिग पाइपलाइन है अराउंड 2500 करोड़ की, एंड स्ट्राइक रेट तो हमारा 15 से 20% के आसपास है।
ओके,
तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर कि 31 मार्च 26 को कहीं भी ऑर्डर बुक 2000 करोड़ के आसपास रहे, एंड इसके अकॉर्डिंग अराउंड 900 करोड़ का हम नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं।
900
करोड़ जी सर।
ओके सर, थैंक यू
सर।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ गिरीश, एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, प्लीज गो अहेड।
गुड आफ्टरनून सर, कैन यू हियर मी?
यस।
या थैंक यू फॉर टेकिंग माई क्वेश्चन। This is regarding, the bids that you're planning to do in the wastewater in Bihar. And from what you said, it's almost like a 700 crore bid. So, and that's a very big bid for us. Do you think we qualify? I mean, we can qualify, like we are able to take such a big bid?
थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। 700 crores का सिंगल बिड नहीं है सर, एक तो
ओके
सर मल्टीपल बिड्स है, दो बिड्स है, लगभग एक 350 करोड़, दोनों ही लगभग एवरेज 300 से 400 करोड़ के बीच के रेडिएशन में है, वेरिएशन में। एंड दूसरा सर, हम फाइनेंशियली क्वालिफाई होते हैं सर, तो हमने ज्वाइंट वेंचर में बिड कराया है सर, जो टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर थे उनके साथ।
ओके ओके, सो ये तो हम इसमें जॉइंट में हमारा स्टेटस क्या होगा, हम कॉन्ट्रैक्टर होंगे या सब कॉन्ट्रैक्टर जैसे होंगे?
लेकिन सर हम पूरा एग्जीक्यूशन पूरा बीआर गोयल ही करेगा सर, एग्जीक्यूशन बिड्स का।
हाँ
सर, क्योंकि क्रेडेंशियल वाइज हम लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, तो हमने ज्वाइंट वेंचर पार्टनर की क्रेडेंशियल्स के लिए जो क्वालिफाई हो रहे थे उनको ज्वाइंट वेंचर में रखा है। आफ्टर इफ वी प्रोक्योर द बिड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, द प्रोजेक्ट विल डायरेक्टली बी कमिंग इन बीआर गोयल ओनली, तो ऑल द रेवेन्यूज फॉर द प्रोजेक्ट विल बी कमिंग इन बीआर गोयल ओनली।
अंडरस्टूड। And yes. What kind of EBITDA margins you think we can target in this?
For the wastewater, sir?
Yes, for the Bihar.
So between 18 to 20%, sir.
Okay. So despite we having a partner, we will target, you think we can target around 18-20%?
Yes, sir. Yes, sir. Our intention is that only, sir.
Okay. And and any timelines for it? Like, of course, I know it's still in bidding, but it's like a one-year project, two-year project?
No, sir, it's a 2.5 year project, around 30 months of the from the date of appointment. So I think so the bids will open between till December or maybe January, and the execution will start from the rainy season. So yeah, from today you can expect the 36 months time period if you get those projects.
Understood. Yes. Thank you. All the very best for it. Thank you.
A reminder to all participants, you may press star and one to ask a question. The next question is from the line of Khushi, an individual investor. Please go ahead.
Good afternoon. Thank you for the opportunity.
Good afternoon.
Ma'am, can you speak a little louder?
Can you speak a little louder, please?
Hello?
Yes, you're audible now.
Okay. So, I had a question that the order book for H1 closed around 1500 crores and it was like 73% up from last year. So, are we expecting that type of order book to sustain in future?
Ma'am, as we have mentioned, that yes, we are continuously bidding, and right now our order pipeline is 2500 crores of orders which we have already bidded. Our general strike rate, you can say it's between 15-20%. So out of that 24%, 2500 crores orders, we expect to get around 500 crores of new orders in the near future. So the order book is, it's a general process. Now as we are, we've moved one step ahead of bidding on bigger projects, so we're focusing on that only. And we're planning to bid more projects in the near future till this year, this fiscal. So I think so, yes, we'll be able to procure all these projects pretty soon. And the orders are going to keep running in.
Okay. That's it for now. Thank you so much and all the best.
Thank you, sir. Thank you, ma'am.
Thank you. The next question is from the line of Diya Jain from Sapphire Capital. Please go ahead.
Hello, sir. Thank you for the opportunity. Hope I'm audible.
Yes, ma'am.
A little louder would help.
Hi, sir. Am I audible now?
Yes, ma'am.
So you said that you'll target like a 35-40% revenue growth in this year. And what sort of EBITDA margins can we target for the whole year?
Last year, when we compare with the company, so we have a big ticket size project. And same line में हम जाते हैं तो टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो बिग टिकेट साइज है जिनमें हायर मार्जिन है, तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा मार्जिन कहीं भी 11% से 13% के बीच में रहेगा कंसोलिडेटेड बेसिस पे, ब्लेंडेड में इसमें टीसीसी एंड ईपीसी दोनों मिक्स होंगे।
एंड फॉर FY 2027
सर, फॉर 2027 वी आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ इन 15-20% and
EBITDA
margin. So 11 will be go around 13% something, 13-14. If we get the better orders in water infra, then it may go to 15-20 also.
Okay, sir. Wow. And also, sir, you mentioned that your margins for wastewater, that
yes,
could
sir.
Be around 18-20, right?
Yes, on EBITDA basis. Yes.
All right, sir. Thank you so much and all the best.
Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Sana, an individual investor. Please go ahead.
Okay. Hello. Good afternoon, sir.
Good afternoon.
Opportunity.
Thank you.
I have few questions. The first one is, I just wanted to understand, what is the long-term revenue mix you are targeting between EPC, TCC and RMC?
Right now, अगर आप order books अगर देखते हैं, तो around 70% contribution from road sector से है, and लगभग 10% के आसपास building से है, balance 20% जो है वो waste water से आने वाला है आगे, या अभी toll collection पे है, ना वो scenario change होगा. तो हम future predict कर रहे हैं, जिस तरह से building हम कर रहे हैं, around 60% जो है revenue वो road contract से आएगा, 10% के आसपास building से रहना है. बैलेंस 15-20% के बीच में टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड सेम बैलेंस 15-20% के आसपास वेस्ट वाटर. जो टेंडर हमने बीट किए बिहार में लाइक 700 करोड़ के बीट किए हैं, और अगर वो मिल जाते हैं तो रेवेन्यू मिक्स में नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ चेंजेस हो सकता है, बट राइट नाउ जो ऑर्डर हाथ में है उसके बेसिस पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइप का रेवेन्यू मिक्स रहेगा.
ओके सर. एंड सर, आर देयर एनी प्लान्स टू अडॉप्ट ग्रीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल और एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट अक्रॉस साइट?
मैम, वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज थिंग्स, लाइक इन स्टील वेयर एवर वी आर हेल्पिंग वी आर फाइंडिंग ग्रीन स्टील और द एफआरपी व्हिच इज डन व्हिच इज कम आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल वी आर ट्राइंग टू यूज इट एज 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 पर द गवर्नमेंट अप्रूवल एंड वेयर एवर वी कैन यूज अ ग्रीन ग्रीन मटेरियल रिक्वायरमेंट वी आर ट्राइंग टू डू सो.
ओके ओके, ऑल राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू.
Yes, ma'am. Thank you so much.
Thank you. A reminder to all participants, you may press star and one to ask a question. The next question is from the line of Diya Jain from Sapphire Capital. Please go ahead.
Hi, sir. Thanks. Hi, sir. Thank you for the follow-up opportunity. So you also mentioned that you're getting into renewable energy with a focus on wind power. So where are we on that currently?
मैम, एक राइट नाउ वी आर नॉट फोकसिंग फॉर न्यू यूनिट ऑफ विंड पावर. 2006-07 में जब डेप्रिसिएशन बेनिफिट एंड इनकम टैक्स बेनिफिट होते थे, तब हमने विंडमिल यूनिट सेटअप किया था राजस्थान में, और वही यूनिट आज कंटिन्यू है. हाँ, हम ईपीसी कॉन्टेक्ट के लिए जरूर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज सोलर प्लांट जो है वो काफी एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो वहां पर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं.
ओके सर, सो नथिंग इज फाइनलाइज्ड एज ऑफ नाउ, वी जस्ट एक्सप्लोरिंग.
वी आर एक्सप्लोरिंग फॉर द पार्टीज, बिकॉज ये सभी काम प्राइवेट पार्टीज को मिलते हैं. डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो बिडिंग होती है वो सोलर प्लांट या सोलर पार्क पूरा अलोकेट हो जाता है प्राइवेट कार्पोरेट प्लेयर्स को. तो कार्पोरेट प्लेयर्स से हमारे जो है मीटिंग गोइंग ऑन है, जहां पे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट हम उनसे ले सके इंस्टॉलेशन के लिए.
ओके सर, अंडरस्टैंड. थैंक यू.
यस, थैंक यू.
Thank you. As there are no further questions from the participants, I now hand the conference over to Mr. Goyal for closing comments.
Thank you, ma'am. Before we conclude, I would like to reiterate that BR Goyal Infrastructure Limited stands at an exciting phase of growth. With a strong order book, disciplined financial approach and dedicated team, we are confident for creating long-term values to all our stakeholders. We would like to thank our investors, clients, partners and employees for their trust and continued support. Thank you so much.
On behalf of BR Goyal Infrastructure Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us and you may now disconnect your lines. Thank you.
Thank you.
Is everyone disconnected? अपन भी कर दो.